भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिलालीदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरिगोवर्धन की, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, वैष्णव भक्त वृंद की, और गोष्ट असमल्दी गोड़ी से और गोष्ट शिशि गुरु गौरंगो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कैंतो स्कंद चार अध्याय तेरा श्लोक संख्या 40 सब मेरे पीछे दोहराइए वैन नामक बालक सरासनम अपना धनुष उद्यम्य लेकर मृगयूह शिकारी वन गोचर जंगल में जाकर हंती मारना असाधु अत्यंत क्रूर होकर मृगान मृगों को दीनान दीन वेन वेन असौ व रहा वे आया इति इस प्रकार अरौत चिल्लाते जना सभी लोग ससरासनम उद्यम्य मृगयु वन गोचर हंति असाधु मृगान दीनान वेनासौ इति औरत जना Sasarasanam udyam mrugayuvana gochara antiya sadhu mrugandina nyanasau iti avrajana sasarasanam udyam mrugayuvana gochara antiya sadhu mrugan dinan vyanasau iti arojana. Actually vyanasau iti arojana. Sasarasanam udyam mruga vena gochara hantiya sadhu mrugandinam vyanasau iti arautujana sasarasanam udyamya mrugayuvana gochara Santar or Bhavart Bhakti Vedant Swami Srila Prabhupada Dwara. Vah Dusht Balak Dhanush Baan Chadakar Jangal Me Jata or Vrithahi Nirdosh Din Hirano Kumar Dalta. Johi Vah Ata Ki Sabhi Log Chilla Uthte. वह आया क्रूर वैन वह आया क्रूर वैन तात्पर्य क्षत्रियों को जंगल में शिकार करने की छूट है इसलिए कि वे वध करना सीखें इसलिए नहीं कि खाने या अन्य कार्य के लिए पशुओं का वध करें क्षत्रिय राजाओं को कभी कभी अपने राज्य के अपराधी की गर्दन काट लेनी होती थी इसलिए क्षत्रियों को जंगल में शिकार खेलने की अनुमति थी क्योंकि अंग का पुत्र वैन बुरी माता से उत्पन्न था अतः वह अत्यंत क्रूर था वह जंगल जाकर वृथा ही पशुओं को मारता रहता। उसकी उपस्थिति से पड़ोस के निवासी भयभीत रहते और उसे देखकर पुकार उठते, वैन आया, वैन आया। इस प्रकार वे अपने जीवन के प्रारंभ से प्रजा के लिए भयावह था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स सरासनम उद्यम्य मृगयो वनगोचर हन्ति असाधु मृगान् दीनान् वीणः असौ इति औरत जनः। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर जंगल में जाता और उठा ही निर्दोष दीनहीन हिरणों को मार डालता। जो ही वह आता कि सभी लोग चिल्ला उठते, वह आया क्रूर वैन, वह आया क्रूर वैन। तो यहाँ महाराज अंग का जो प्रयत्न था कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए सुंदर यज्ञ किया जाए, तो जब यज्ञ पुरोहित ब्राह्मण कर रहे थे तो कोई भी देवी देवता और भगवान खुद यज्ञ का भाग लेने के लिए आए नहीं। तो ब्राह्मणों ने निष्कर्ष निकाला कि राजा अंग के गत जन्मों के कुछ पाप प्रारब्ध होके सामने आ रहे हैं, तो इसलिए भगवान और देवी देवता है देवी देवताएं और देवाधिदेव देव देव जगत पते, मैं दोनों को अलग करता हूं। तो कोई नहीं आया, न देवी देवता है न देवाधिदेव कृष्ण विष्णु। तो बाद में पुरोहितों ने कहा कि ठीक है जो भी हो लेकिन आप आहुति दो और यज्ञ संपन्न करो, जो भी हो चाहे आए न आए। तो आहुति दी और तुरंत यज्ञ पुरुष खीर लेके प्रकट हुए। खीर महाराज हमको दी और जो खीर थी वो रानी को दी। पुत्र जन्म हुआ वेन, तो वेन यहाँ सुंदर वर्णन है बयान कि वो बिल्कुल नास्तिक क्रूर असाधु व्यक्ति था। तो ऐसा क्यों, जो अपेक्षा नहीं थी वो हुआ, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी आगे वाले पूर्व परपोर्ट में, पूर्व भावार्थ में कह रहे हैं कि बेटा ज्यादातर माँ और माँ के जो वंशज हैं उनका गुण ज्यादा बेटा में होता है और बेटी का गुण बाप का लिनिएज। बिल्कुल सही बात है। तो वेन टोटली नास्तिक था और यहां जब जंगल में जाता है वो तो प्राणियों को मारता है जो साधु प्राणी है। और बुरी तरह मारता है, पड़ोसियों की पिटाई, बच्चों की पिटाई, ये परपोर्ट में नहीं है, आगे पीछे कुछ परपोर्ट में मैंने या तो भाषांतर में। बच्चों की भी अपने समकालीन समवयस्क बच्चों की खूब पिटाई करता था, सब उनसे डरते थे कि क्रूर आदमी है। और पड़ोसी भी बहुत डरते थे। यहां लिखा है आया वे आया क्रूर वैन, वे आया क्रूर वैन दो बार, ऐसा लोग चिल्ला उठते थे, इतना क्रूर था बचपन से ही। तो बड़े होते भी वो नास्तिक रहा। उनने अपने राज्य में ढंडेरा फिटाया, घोषणा की भेरी घोषणा, भेरी घोषणा, भेरी के घोषणार्थ से ढंडेरा अनाउंसमेंट किया, जो भी हिंदी वर्ड हो अनाउंसमेंट, न दातव्यम न होतव्यम देरी घोषेण, न दातव्यम दान मत दो, न होतव्यम यज्ञ मत करो, नास्तिक बनो राक्षस बनो भक्ति मत करो, देरी घोषेण। उन्हें घोषणा सारे राज्य में घोषणा करवा दी। तो इनका काम था, उनका काम था कोई भी प्रकार की क्रिया प्रवृत्ति भगवान के संबंध में नहीं होनी चाहिए राज्य में। तो आगे बात कथा आती है कि ये सब ऋषि मुनि इकट्ठे होते हैं, अराजकता हुई तो, क्योंकि प्रजा तंग आ गई तो ऋषि मुनि को प्रजा विनती करती है कि कुछ उपाय करो। तो इसे आगे कथा चलती है कि यानु को डिथ्रोन करते हैं सारे ब्राह्मण मिलके। तो यहाँ प्रभुपाद जी पोलपुट में कहते हैं भावार्थ में कि बेटा ज्यादातर अपनी माँ और माँ के पूर्वज वंशज उनका गुण ज्यादा उनमें आता है और माता ऐसी ही थी उनका सारा लिनिएज पूर्वज सब ऐसे ही थे नास्तिक। तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम शादी अपने बच्चों की या हम शादी करते हैं तो ये देखना चाहिए कि लड़की के पिता माता कौन है, उनके पिता माता चार पीढ़ी तक कम से कम देखना चाहिए। तो बहुत जरूरी है अभी ये समय पर ये सब कम होता जा रहा है। 80% तो गांव में ये सब देखा जाता है लेकिन पाश्चात्य हवा बहुत जोरों से बह रही है, इंटरनेट इन पॉकेट टीवी, सो इससे हमारी संस्कृति सारी अभी शादी होती इंटरनेट पे, गांव में नहीं लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे बच्चे इंटरनेट पे ही, तो इंटरनेट में कौन कहां से क्या आता है, क्या उनका सारा लिनिएज है, उनके माँ बाप पूर्वज वगैरह, माँ बाप देखते हैं डॉक्टर है या तो कुछ पढ़ा लिखा उनका पिता माता है, लेकिन सब कुछ पैसों के ऊपर शादी, पैसों के ऊपर, पैसा कितना है और कितना कमा सकते हैं। ऑफकोर्स ये जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहिए, शादी बराबर में होनी चाहिए, ऐसा भी ना हो कि असमता हो, शादी बराबरी में होनी चाहिए क्योंकि प्रेम बराबरी में होता है। प्रेम भी अगर हस्बैंड वाइफ तो एक दूसरे को प्रेम तो करेंगे ही, तो वो प्रेम भी बराबरी में, नहीं तो ताना मारेंगे एक दूसरे को कि तीनों, तो प्रेम भी बराबरी में होता है इसलिए शादी भी बराबरी में होनी चाहिए और उसके लिए उनके चार पीढ़ी तो कम से कम देखनी चाहिए। अगर वो और गांव में पहले तो हमारे मेरे जमाने में, यहां सबसे बूढ़ा मैं ही हूं, मेरे से बूढ़ा कोई नहीं है, 70 साल किसी के हैं यहाँ, 71 आप तो जवान हो, जवान लगते हैं, चलो एक कॉम्पिटिटर। हमारे जमाने में इसलिए कह रहा हूं कि पुराने जमाने में बूढ़ा होने में 60s अपर 60, तो बहुत डिटेल में मेरी शादी हुई तो डिटेल में उनके माताजी के माँ बाप और मेरे माँ बाप डिटेल, सारी डिटेल, उनके माता पिता क्या करते, उनके माता पिता क्या करते, उनके माँ बाप क्या करते थे, डिटेल स्टडी। तो ऐसी स्टडी होनी चाहिए तभी शादी टिकती है और टिकने पर भी अच्छे बालक पैदा होते हैं। तो शादी क्यों करनी है, तो पुत्र पिंड प्रयोजन पुत्रार्थे भार्या, पुत्र के लिए भार्या पत्नी करनी चाहिए और पितृ पुत्र की चाहिए पितृ पिंड प्रयोजनम, ताकि पुत्र पूरा मुख्य न पूरा पिंड प्रयोजनम और अंत्येष्टि दाह अंत्येष्टि संस्कार पुत्र पिंड प्रयोजनम। पिंड का प्रयोजन क्यों, पुत्र पिंड दर्द क्यों, क्योंकि हम नरक में होंगे तो पूर्ण नाम नरक नरक त्राणायते इति पुत्र, नरक से हमने जो मुक्त करे वो पुत्र है। तो वर्ण संकर प्रजा ये क्या पिंड देगी, क्या अंत्येष्टि संस्कार करेगी, और क्या वो अगर करेगा पिंडदान फिर भी कितना पहुंचेगा, क्वेश्चन मार्क है, बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। उनकी उनका जीवन ही इतना भक्त भक्त पुत्र होना चाहिए, भक्त पुत्र होना चाहिए। सेंटर है कृष्ण, सारे समाज का सेंटर है कृष्ण, ये सेंटर निशाना नहीं चुकना चाहिए। तो पुत्र भक्त हो कृष्ण का तो फिर सुत सुत कपुत की धन संचय, सुत सपुत की धन संचय, अर्थात कपुत है तो सारा समाज, और सपूत है, सपूत का अर्थ है भक्त, जननी जनतो भक्त जन का दाता का शूर नहीं तो लेजे वाजनी मत कुमार विष्णुर। जननी है जननी माता, अगर जनना है को जनक पिता और जननी बनना है जनक जननी तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, यू आर एस्क्यूज्ड, आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, बैठे रहो, यू आर एस्क्यूज्ड, ये बुढ़ापन है तो हमें ये ओवरलुक करना है, वी हैव टू। अगर बच्चा शरारत करता है तो अलग है। इनको कुछ कैंडी चाहिए आपको है, ओके। तो जननी जन तो भक्त जन, भक्त अगर जननी बनना है तो भक्त बन, भक्त को जन्म दे। माता न सस्यात, पिता न सस्यात, देव न सस्यात, राजा न सस्यात, तदपि न मुच्यत समुपेति मृत्युम। अगर मृत्यु से हम बचा न पाए पुत्र परिवार सबको, तो माता पिता जनक जननी नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। तो पुत्र हमें भक्त पुत्र चाहिए, इसलिए पहले देखना चाहिए कि भक्त है कि नहीं। ऑपोजिट स्त्री या जिसका जिसके जिसका विवाह हो रहा है वो एक दूसरे को देखे पहले भक्त है कि नहीं, और उनके माँ बाप भक्त है कि नहीं, उनके माँ बाप के माँ बाप भक्त थे कि नहीं, उनके माँ बाप के माँ बाप भक्त थे कि नहीं। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। पुत्र अच्छा चाहिए तो चार पीढ़ी तक, प्रभुपाद जी कहते इवन तीन पीढ़ी, प्रभुपाद तीन पीढ़ी कहते हैं कि इट टेक्स थ्री जनरेशन टू चेंज द ब्लड, ये जो लहू है उनको बदलने के लिए तीन पीढ़ी चाहिए। चार पीढ़ी। तो ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम तीन पीढ़ी चार पीढ़ी पीछे देखें कि भक्त है कि नहीं, तो जिनके साथ शादी हो रही है वो भक्त ही होंगे, भक्त ही होंगे। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इसलिए कि हमें श्री कृष्ण को सेंटर में रखना है। समाज, कुटुंब, राज्य, पृथ्वी, सारी पृथ्वी पर भगवान को सेंटर में रखना है हमें। इसलिए राक्षसों को, राक्षस लोग हैं जो राक्षस, इनकी क्वालिटी हम यहाँ नहीं गा रहे, लेकिन राक्षस वो है जो श्री कृष्ण से उल्टे चलते हैं। विष्णु भक्त भवे देव आसुर्यस्य विपर्जय। तो जो भक्त बालक पैदा होता है तो वो हमारा कल्याण कर सकता है, पूर्ण नाम नर्क में से भी बचा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम दूसरों पर निर्भरित रहे ही क्यों, हम ही क्यों न कर ले हमारे, हमारा कल्याण खुद क्यों न कर ले, और हमसे ही आगे वाली पीछे वाली पीढ़ी तैर जाए। जहां के पंडित जरूर कहते हैं कि पुत्रहीनम गृह शून्यम, मित्रहीनम दिक्कत शून्यम। पुत्र के बिना ग्रह गृहस्थी शून्य है, लेकिन वो सतपुत्र होना चाहिए, भक्त पुत्र होना चाहिए। अगर नलायक पुत्र है तो उसे तो हम भी नरक में जाएंगे, वो भी नरक में जाएगा। और आगे अगर बात करें तो जो शुद्ध भक्ति कर रहा है उनको पुत्र की क्या जरूरत है, उनको पुत्र की जरूरत क्या है? है तो सही, नहीं है तो सही। जिसमें टू कृष्ण, अगर कृष्ण भगवान हमें पुत्र पुत्री न दे तो और बड़ा आशीर्वाद है। भक्ति करें, चिंता नहीं, पुत्र पुत्री में 50 साल तक आप बंधन बिल्कुल इधर उधर नहीं हो सकते। और स्पेशली पुत्री हुई तो उनका प्रोटेक्शन मां को ज्यादातर इन्वॉल्व होना पड़ता है, कि हमारे जमाने में पुत्री कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी और कभी मां के बिना स्कूल जाते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा संरक्षण अभी तो वेस्टर्न वर्ल्ड का वायु यहाँ बह रहा है, तो पुत्रियों को भी बाहर निकलो, बाहर निकलो, और टाइटी पहनाएंगे, टाइटी, और ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो समाज कैसा हो जाए? बिल्कुल गलत बात है। और पुत्र भी ऐसे, अभी देखो भारत में सारा मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल काइंड ऑफ पिज्जा, डोमिनो एंड हट, पिज्जा हट एंड व्हाट नॉट, एंड सब बच्चे बाहर, तो अच्छा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम ही हमारा कल्याण क्यों ना करें, और अगर हमारा कल्याण हम कर ले तो पुत्र की क्या जरूरत है? अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो अच्छा है। अगर पुत्र हो तो शुद्ध भक्त हो। तो भागवत का एक श्लोक है कि नरूणी च राजन सर्वात्मा शरणम गतव्यम गतव मुकुंदम परिहूत कर्तुम देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम ना किं करो ना एम ऋणी चे राजन, किसी के ऋण हमारे ऊपर सब ऋण उऋण हो गए हम, तो पुत्र की क्या जरूरत है। तो हमारी भक्तों की फैमिली जो होती है उसमें भी अगर पुत्र नहीं हो तो भक्त की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सास ताना देती है, ननद ताना देती है, और ससुर और पुत्री और जो बहू बेचारी है वो मुझे पुत्र नहीं हो रहा है। तो हमारे भक्तों में ये नहीं होना चाहिए, हमारे भक्तों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद हमारा कल्याण खुद कर लेंगे, इतना ही नहीं आगे पीछे का कल्याण करेंगे। तो भक्त फैमिली में पुत्र परिवार नहीं है तो ठीक है, भक्ति करेंगे और भक्ति का प्रचार करेंगे और मौज में रहेंगे, मौज उठाएंगे, मौज करेंगे, कृष्ण की कृपा राधा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए, मौज उड़ाए, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उद्देशी तारो एजन, समथिंग लाइक दैट। ये श्लोक सही है, पीछे वाला कृष्ण नाम उद्देशी तारो एजन। तो कितना सुंदर जीवन है, पुत्र नहीं तो हैरान कर होने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हम हमारा कर लेंगे। तो उत्साह और दृढ़ निश्चय, यही जीवन में प्रभुपाद जी कहते हैं यही जीवन में मैं कृष्ण का दर्शन करके ही रहूंगा, इसको उत्साह बोलते हैं, इसको बोलते उत्साह निश्चय, ये दृढ़ निश्चय धैर्यात ये जीवन में। और निश्चित रूप से एस योर एस डेथ कृष्णा मिलेंगे ही, उनका बस नहीं चलेगा कि इन भक्त का दर्शन दू या न दू। तत्य अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो मुंजान एवात्म कृताम विपाकम यथवा मनोवीर विदतु नमस्ते समुक्ति पदे दया पाक। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सोच नहीं सकते कि इनके ऊपर मैं कृपा करूं या न करूं। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू सर्व डॉग, डॉग विल लव यू, इफ यू सर्व कृष्ण गॉड, गॉड विल लव यू। So when you serve Krishna, then Krishna will love you. Dog, if you serve, आप कुत्ते की सेवा कर रहे हो, खाना और सब कुछ दे रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कुत्ता सोचता नहीं कि इनके साथ में प्रेम करूं या ना करूं। कुत्ता प्रेम करता ही है, करना ही पड़ेगा। इसी तरह प्रभुपाद जी लॉजिक लगा रहे हैं कि इफ यू सर्व कृष्णा देन कृष्णा हैज टू लव यू, नो क्वेश्चन, कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे, कृपा करेंगे या नहीं करेंगे। कई भक्त लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम हरे कृष्णा सब भक्ति शुद्ध सब कुछ करते हैं अच्छी तरह, लेकिन अंत में भगवान हमें याद नहीं आएंगे। तो हमारे कृष्ण क्रूर नहीं है, थैंकलेस नहीं है। हर पल कृष्ण जो भक्त उनका शुद्ध भक्त है, हर पल वो शुद्ध भक्त उनके मन में रहता है। साधु हृदयम महियाम साधु त्व हृदयम च हम न धन्यात न जानाती, मैं कुछ नहीं जानता उनके बिना। साधु के हृदय में कृष्ण, कृष्ण के हृदय में साधु, और ये नाता ऐसा है कि तोड़ने पर भी नहीं टूट सकता, तोड़ने पर भी नहीं टूट सकता। जीव और कृष्ण का नाता ऐसा है, थोड़ा कुछ भी कर लिया भगवान के लिए भगवान बहुत बड़ा पहाड़ जैसा मानते हैं। तो हमें पुत्र की क्या जरूरत है, पुत्र पिंड प्रयोजनम, पुत्र की क्या जरूरत, और पुत्र की कोई आएगी दूसरी तो झमेला हो, ज्यादातर झमेला होता है, सास और बहू को ज्यादातर झमेला रहता है और सारा कुटुंब डिस्टर्ब हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं, मेरी पत्नी या मैं अकेला, सबसे श्रेष्ठ अकेला, ये गेरुआ सबसे श्रेष्ठ है, ये बुद्धिमान है सारे जो गेरुआ वाले हैं, सब बुद्धिमान है, सारी झंझट गार्बेज में है ना, सारी झंझट न्यू झंझट, बाहर सो गए, हरे कृष्ण मंदिर में जाके प्रसाद सेवा कर ली, प्रसाद पा लिया और पंछी बड़ू उड़ के फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, कोई फिक्र नहीं, बस कृष्ण को भजो और गेरुआ लगाए रखो। ज्यादातर गेरुआ थे पहले जमाने में, ज्यादातर ये लोग सोचते थे कि ये संसार में क्यों, पर संसार है संसार, और संसार में 51 तक तो आप निकल ही नहीं पा सकते, नहीं नहीं निकल सकते। अगर अगर आप भाग्यशाली हो तो 51 में वन वृंदावन आ सकते हैं, जल्दी ऑफस्प्रिंग, जल्दी गृहस्थ आश्रम निपट जाए। लोग शादी, अभी तो लड़का लड़की शादी करते 30 साल में, 30 साल से होते तो, और बाद में भी एजुकेशन रह जाता है, पीएचडी रह जाती है, रह जाता है, तो स्ट्रॉल करते हैं बच्चे, तो उनका इतना जीवन स्ट्रॉल होगा, भक्ति कब करेंगे, ये सब सब झमेला है, पूरा झमेला। इससे अच्छा है कि हम ही समझ जाएं, और हमें क्या समझना है, कृष्ण ही हमारे जीवन का मध्य बिंदु है, कृष्ण, चाहे गृहस्थ गृह थाको वन्य थाको सदा हरि बोलने दाको, एकोन चैतन्य पे राधा माधव नाम बोलो रे, बस यही प्रोसेस है। क्योंकि ज्यादातर आप देखो हमारा गुरुकुल भी प्रभुपाद के जमाने में कितने गुरुकुल थे, और सारे बच्चे बिखर गए, सारे बच्चे बच्चे को हम अच्छी शिक्षा भी देना चाहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एवरी लिविंग, हर जीवात्मा स्वतंत्र है, इसलिए बच्चे को 15-16 साल तक हम भक्ति करवा सकते, बाद में क्या पता भक्ति क्या करते करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सब संसार, इनको संसार कहा है, शादी करना लोग जनरली संसार कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को संसार नहीं कहते, शादी बच्चे घर कमाई बिजनेस संसार, इनको संसार कहते हैं। तो संसार ये माया जाल है, माया जाल, आ जा फंसा जा। तो इसलिए स्त्री सुंदर होती है, स्त्री, हर स्त्री सुंदर है, और हर योनि में, ऐसा नहीं कि स्त्री मनुष्य योनि में, हर योनि में, और नर फंसाता है, नर ये फंस जाता है, फीमेल मेल कहेंगे, स्त्री नहीं कहेंगे, हर योनि में, तो बस उनका संसार शुरू हो जाता है, बच्चे बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ा के शादी करो, शादी करके बच्चे का बच्चा वो शादी करेगा, वो बिजनेस वो कैसे खाएगा, उनका मैं कमा लू, चार पीढ़ी तक चलेगा, और हो गया संसार बिल्कुल जमाया जाओ। जितने पुत्र परिवार सब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सब पुत्र परिवार आपके हैं अगर हम कर सके तो। माया जाले बद्ध है ये, माया जाले बद्ध है ये, माया जाले बद्ध है ये। बहुत पुराना सॉन्ग है हमारे जमाने का, इस्कॉन का, भूल गया। एकान चैतन्य पे राधा माधव माम एनी वे, माया जाल है। अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, नर और मादा दोनों के बीच में जो आसक्ति या अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण जो है, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद् तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितैर जनस्य मोहयम् जनस्य मोहयम् अहम् ममेति। थैंक यू। अहम् ममेति पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव, मैथुनी भाव ब्रह्मचारी भाव रखना चाहिए। दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट सार्प कुशाग्र बुद्धि ऊर्जोरेता बनते हैं, ऊर्जोरेता मैस्टी के ब्रह्मचर्य ऊर्जोरेता बनना चाहिए। लेकिन यहां श्लोक में क्या कहते हैं भागवत, पुंसा स्त्री या मैथुनी भाव, पुरुष और स्त्री नर मादा के बीच में मैथुन भाव, मैथुनी भाव में तत् त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, उन मिथो काम से दोनों की ग्रंथि बन जाती है, हृदय ग्रंथि माहुर, अतः उनमें से गृह क्षेत्र सूत आप्तवित सिक्वेंशियली क्रमवार हमारा बंधन टाइट होता जाता है, वी आर सकल बंधन। पुंसास्त्रीय मैथुनी भाव में तो तय मिथो हृदय ग्रंथि मारु, अतः गृह क्षेत्र, अतः गृह चाहिए। अगर पति पत्नी शादी हुई तो अभी तो पहले अमेरिका में पूछती है कन्याएं, वहां तो उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल गलत है। पहले तो वर राजा बनना है तो कन्या को पगे पड़ना पड़ेगा, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज। कन्या को लड़का क्या पहले बोलेगा, प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी। ऐसा मैं एग्जैजरेशन नहीं करता, उनके चरणों में पड़ते हैं, ये वहां के वहां का नियम। और बाद में कन्या अथवा गुरु क्षेत्र सुताप्त वितर, सो पहले शादी करना है तो कन्या पूछती है गृह कहाँ है। दिस इज अ पॉइंट आई वॉज मेकिंग कि आपके पास घर का घर है कि बाप का घर है, पहले ये सवाल। तो गृह पहले चाहिए, जैसे शादी हुई गृह चाहिए, और गृह हुआ तो अतः गृह क्षेत्र बिजनेस चाहिए घर चलाने के लिए, नौकरी धंधा कितना कमाया, पहले पर्ची दिखाओ कि कितना मिलता है, उनकी ऑथोराइज पर्ची दिखाओ कि आपको कितना मिलता है, यहां रखो पहले, तब मैं शादी करूंगी। गृह क्षेत्र बिजनेस, अतः गृह क्षेत्र सूत, बाद में सूत पुत्र परिवार बच्चे नेस्ट, पशु पंछी मिलते हैं अंडा रखते हैं, नेस्ट पहले बनाते हैं बाद में अंडा, तो यही सिद्धांत हमारा है। अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त अपने, आप्त मीन्स अपने सास ससुर संबंधी, आप्त वितर और वित्त चाहिए, वित्त पैसा, और ये सब के लिए हमें कितना कड़ी मजदूरी करना पड़ेगा, कितनी कड़ी, एक पैसा कमाने के लिए लंबा समय आपको देना पड़ेगा। तो ये बुद्धि नहीं है, ये बुद्धू की बात है। सैफरन सैफरन गवाह बनना पड़ता है, पहले स्त्री का पुरुष का गद्दा बनो, बाद में बच्चों के गद्दा बनो, बाद में बिजनेस पर जाओ तो बॉस का गद्दा बनो, गद्दा बनने का अंत ही नहीं आएगा। अंत्येष्टि संस्कार बेटा करेगा, उसके लिए हमें पहले गद्दा बनना पड़ेगा। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वितर जनस्य मोहयम, जन गली के गांव के मेरे हैं, गली के गांव के उनमें मोह, जनस्य मोहयम मोह माया, अनहम ममेति परफेक्ट माया, जाल में जकड़ जाओ और मरो, यही है जीवन। पुत्र के लिए सारा मेरा समय हो गया, सारा जीवन व्यतीत करो और सफरिंग, नथिंग बट सफरिंग। इससे अच्छा है हम ही प्राण ले लें कि इस जीवन में मुझे, प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरह, मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं और निकल जाओ माया जाल से। जो भी माया जाल है, बच्चे हैं, पत्नी है, जो भी है, भगवान की ओर। तो एनी क्वेश्चन कमेंट? सो यहाँ पुरपोट क्या है कि ऐसा पुत्र पैदा करना उससे अच्छा है कि पुत्र ही ना हो, व्यण जैसा पुत्र, नास्तिक आस्तिक भगवान श्री कृष्ण का भक्त पुत्र पैदा करना चाहिए, नहीं तो फिर जमेला जहां से जहां तक आया है वहां रोक जाए, नो बच्चे नो कच्चे, या नो पत्नी, पहले नो पत्नी, अगर पत्नी हो गई तो बच्चे वो पैदा करो जो कृष्ण भक्त बालक हो, अगर बच्चे कच्चे ऐसे पैदा हो गए तो पत्नी के साथ छोड़ दो सारा और निकल जाओ वृंदावन की ओर। लेकिन हमारा सिद्धांत होना चाहिए इस जीवन में मुझे कृष्ण पाना है, कृष्ण प्रेम पाना है, भक्तों का संग चाहिए। या सवाल है कि कमेंट है? इनकी कमेंट ज्यादा होती है। हाँ बोलिए, आपका मुंह ही माइक है आप। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा बोलते, जोर से बोल दो।
हरे कृष्णा। परम श्रद्धेय महाराज श्री, आप एक सदगृहस्थ गुरु वैष्णव संत हैं और श्रीधाम वृंदावन में मार्सिस मास में कायतानी व्रत के पावन प्रथम शनिवार में आपने हम सभी को आह्लादित और भक्ति भावना से ओतप्रोत किया, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम सभी भक्तों की तरफ से इस प्रांगण में करते हैं। और जैसे आपने परिवार और विवाह के संबंध में बताया, हमारे वस्त्र का रंग चाहे जैसा हो, चाहे हम सन्यासी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, लेकिन हमारे सभी के हृदय में प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का रंग हमेशा गौरी वैष्णवता जैसा ही होना चाहिए। तो ये ताली तो आप प्रसन्नता में बजाएं, लेकिन हमें कहने का पूरा मौका मिले समय सीमा का भी ध्यान रखें। तो जैसे शादी में पहले 6 बातें ध्यान रखी जाती थी हमारे भारतीय और सामान्य हर मनुष्य परंपरा में, हम केवल भारतीय परंपरा नहीं कहते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ए फॉर एबिलिटी, बी फॉर ब्यूटी, सी फॉर करेक्टर, डी फॉर डाउरी, ई फॉर एजुकेशन, या फॉर फैमिली। अब क्या लोग हैं केवल डाउरी और ब्यूटी देख रहे हैं, एबिलिटी करेक्टर फैमिली और एजुकेशन को भूल गए हैं। और डाउरी जो है डिवोशनल वैष्णव डाउरी होनी चाहिए और ब्यूटी जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी होनी चाहिए। तो ये हमारा कमेंट था और प्रश्न पर हम पहुंच रहे हैं। हमारा प्रश्न यह है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने जैसे महाराजा बेन का प्रसंग श्रीमद् भागवत में बतलाया, बेन तो अकेले थे और इतना त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो कंस को अपने धाम भेज दिया 5000 वर्ष पहले, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर आज हम वृंदावन धाम में प्रत्यक्ष रूप से मथुरा गेट के पास देख रहे हैं। अंडे बिक रहे हैं, चुज्जे बिक रहे हैं, बेचने वाले दूसरी कम्युनिटी के हैं, लेकिन खाने वाले हमारे भारतीय हिंदू लोग हैं। तो यह कब तक अंडे और चूजे श्री धाम वृंदावन में मथुरा गेट पर बिकते रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण की यह पावन वृंदावन की लीला स्थली भक्ति भावना नहीं पापमय से ओतप्रोत होती रहेगी, इसके संदर्भ में आप मार्गदर्शन करें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बनाई है जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को द स्टेटस को यानी यथार्थ रूप में व्यक्त किया, और पूरी धराधाम पर एक यही संस्था है जहां श्रीमद् भागवत के कथाव्यास और श्रीमद् भगवत गीता के कथाकार श्रोताओं को भी टिप्पणी और प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं। इसके अलावा दुनिया की कोई संस्था नहीं है जो टिप्पणी और प्रश्न का अवसर देती हो। तो कृपया आप इस तथ्य से हम सभी श्रोताओं को अवगत कराएं, मार्गशीर्ष मास में आज शनिवार है और शनि जो है न्याय के देवता हैं और मार्गशीर्ष का प्रथम शनिवार है और हम सभी श्री धाम वृंदावन में है, तो कब तक अंडे और चूजे बिकेंगे और ये धरती पापमय होगी या पूर्ण रूप से वैष्णवमय कब हो सकती। हरे कृष्णा, धन्यवाद।
दो चीजें यहाँ है, एक तो राजा कृष्ण भक्त होना चाहिए और पुरोहित यहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनि आए तो शुद्ध भक्त होने चाहिए। तो शुद्ध भक्त जब राजा का गुरु बनता है राजगुरु तभी ये चीज पॉसिबल है। और ये सेक्युलर बिन सांप्रदायिक एक तो राज्य है और शुद्ध भक्त हमारे कक्ष में यहाँ कहीं शुद्ध भक्त हो सकते हैं, प्रचार ही सार है। तो दो चीजें, राजा कृष्ण भक्त शुद्ध भक्त हो और उनका गुरु उनसे भी शुद्ध हो, ये दो जब मिले तभी ये शक्य है, बाकी का मलम पट्टी जैसा है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद।